नमस्कार भारत, 20 जून दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन ने कहा लोग घरों में ही रहें तो बेहतर। ललित मोदी विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को क्लीन चिट दी।
इन सारी चीजों से सिद्ध होता है कि ये ओसी राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय वसुंधरा जी हमारी सर्वमान्य नेता है।
हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, देखते हैं कैसी है इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म।
And he is back with the film Anybody Can Dance Too.
खेल की खबरें और समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। यहां 24 घंटों के भीतर 500 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसतन 15 दिन की बारिश के बराबर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी बारिश की संभावना जताई है। बीएमसी के कमिश्नर अजॉय मेहता ने कहा है कि प्रशासन ने लोगों को आज भी घरों के भीतर रहने की सलाह दी है। मैक्सिको के उत्तरी शहर गार्सिया में कुछ बंदूकधारियों ने एक बियर हॉल में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये बंदूकधारी 2 वाहनों में आए और उन्होंने बियर हॉल में ग्राहकों पर गोलियां चला दी। इसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हमले का क्या मकसद था, यह अभी साफ नहीं हुआ है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक अफ्रीकी अमेरिकी चर्च में गोलीबारी कर 9 लोगों को मारने के आरोप में पकड़े गए गोरे युवक को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया है। 21 वर्षीय डिलन रूफ पर चार्ल्सटन शहर के चर्च में 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को मारने का आरोप है। मृतकों में से एक ईथल लांस की बेटी ने अदालत में डिलन रूफ को एक भावपूर्ण संदेश दिया। तुमने मुझसे एक बेशकीमती चीज छीन ली, मैं अब उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, मैं उनका हाथ कभी नहीं थाम पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हारी रूह पर रहम करती हूँ। तुमने मुझे आहत किया है, तुमने बहुत से लोगों को चोट पहुँचाई है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ, भगवान तुम्हें माफ करे। ये थे ईथल लांस की बेटी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। क्रेमलिन का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास से ग्रीस को वित्तीय मदद देने पर कोई चर्चा नहीं की। बहरहाल, दोनों देशों ने एक गैस पाइपलाइन बनाने के समझौते पर जरूर दस्तखत किए। ग्रीस के प्रधानमंत्री सिप्रास का कहना है कि रूस उनके सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए कि अगर ग्रीस को यूरोजोन छोड़ना पड़ा तो वह मॉस्को से मदद लेने की सोच सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि रूस खुद अपने खर्चों में कटौती कर रहा है, इसलिए वह अकेला ग्रीस को कोई खास मदद नहीं कर सकता। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए इथियोपिया का दौरा करेंगे। उनके प्रेस सचिव जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा पूर्व निर्धारित कीनिया दौरे के बाद अदिस अबाबा जाएंगे। राष्ट्रपति ओबामा के पिता इथियोपिया मूल के हैं। इथियोपिया और कीनिया दोनों ही देश सोमालिया के चरमपंथी गुट अल शबाब के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जिनेवा में यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि इस्माइल शेख अहमद लगातार 4 दिनों तक दोनों पक्षों से बात करते रहे, लेकिन वे उनके बीच कोई समझौता नहीं करवा सके। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। जल ही जीवन है, ये जुमला अक्सर पढ़ने लिखने और सुनने में आता है, लेकिन 14वीं शताब्दी में कबीर दास बहुत पहले कह गए कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। कुछ दिन पहले तक भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही थी और अब बारिश भारी पड़ रही है। जीवन देने वाले जल से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। वैसे अभी तो ये शुरुआत है, हर साल की तरह इस साल भी आने वाले दिनों में भारत के बाकी हिस्सों से भी इस तरह की खबरें आने लगेंगी। हम बात कर रहे हैं मुंबई की, जहाँ मानसून आमतौर पर 10 जून को पहुंचता है, जहां बीते 2-3 दिनों में पानी जम कर बरसा है, इतना कि कुछ सड़कों पर नाव भी चलाई जा सकती है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता सुशांत मोहन। सुशांत, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी संदीप, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूं। और आपने जैसा कहा कि नाव भी चलाई जा सकती है सड़कों पर, ये बात बिल्कुल सही है। इस वक्त मैं जिस इलाके में हूँ, ये अंधेरी वेस्ट का इलाका है, मुंबई का एक ऊंचा इलाका है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रात भर हुई रुक रुक कर जो बारिश हुई, उससे यहाँ पर भी जल भराव जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। कल बहुत ज्यादा परेशानी रही, लगभग मुंबई के हर इलाके में पानी भर चुका था। और इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ का नजारा बताऊं तो मेरे सामने दूर दूर तक, हालांकि सुबह हो गई है, लेकिन कहीं पर भी रोशनी के ज्यादा निशान नहीं है। मैं काले बादल देख पा रहा हूँ, बारिश लगातार हो रही है। और अगर कल जैसे हालात रहे तो जैसा आपने कहा कि कुछ सड़कों पर, मैं कहता हूँ कि हर सड़क पर ही नाव चलाई जा सकेगी।
और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की एहतियात बरतने के लिए चेतावनी जारी की गई है क्या?
जी हाँ बिल्कुल, महानगर निगम के आयुक्त हैं अजय मेहता, उन्होंने मुंबई करों से और मुंबई में बाहर से आने वाले लोगों से सभी से ये कहा है कि वो अगर बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना ही निकले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी सभी FM स्टेशन और अखबारों के माध्यम से ये कहा गया है कि मुंबईकरों को आने वाले 2 दिनों में अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना है, जो कि आज हो भी रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और सुशांत, हम आपके पास थोड़ी देर बाद फिर आएंगे ये जानने के लिए कि मुंबई से आज जो अखबार छपे हैं उनमें क्या खबरें छपी हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अभी अगली खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार योग दिवस मनाने की तैयारी में जुटी है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ललित मोदी मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन दोनों अभी तक विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कोई हफ्ते भर की चुप्पी के बाद ललित मोदी के मामले में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुंह खोला और मुख्यमंत्री राजे का जमकर बचाव किया। दिल्ली में जहां बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी राजे की हिमायत में मुखरता के साथ बोले, वहीं पार्टी ने जयपुर में भी आक्रामकता के साथ मुख्यमंत्री का बचाव किया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। त्रिवेदी ने कहा, कथित आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।
जो दस्तावेज आए हैं, वसुंधरा जी ने यह बात स्वीकार की है कि श्री ललित मोदी के साथ उन लोगों के नजदीकी पारिवारिक संबंध थे, इस विषय को उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। दस्तावेजों की प्रामाणिकता अभी तक सत्यापित नहीं है। जो उनके पुत्र और भाजपा सांसद श्री दुष्यंत के कंपनी में निवेश का विषय है, तो यह कोई नया विषय नहीं है। ये सारे तथ्य इनकम टैक्स के रिटर्न में और सांसद का नामांकन भरते समय उनके हलफनामे में स्वतः स्पष्ट है, तो ये चीज पहले से ही सार्वजनिक संज्ञान में है।
इससे राजे और उनके समर्थकों में उत्साह का संचार हुआ है। राजस्थान में पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी और संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ शुक्रवार को प्रेस से मुखातिब हुए और आरोपों का जवाब दिया। इन नेताओं ने कहा कि प्रतिपक्ष और मीडिया का एक वर्ग बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं,
इन सारी चीजों से सिद्ध होता है कि ये ओछी राजनीति हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र की पूरी पार्टी, राजस्थान की पूरी पार्टी और केंद्र ने जो दस्तावेज जिनका जिक्र मीडिया में किया, उन दस्तावेज को सिरे से नकारते हुए कहा कि माननीय वसुंधरा जी हमारी सर्वमान्य नेता है, इनके पुत्र की कंपनी ने जो भी ट्रांजैक्शन किए वो विधि मान्य है।
बीजेपी ने लगे हाथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उधर कांग्रेस ने दिल्ली और राजस्थान में मुख्यमंत्री पर अपने हमले जारी रखे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजे के इस्तीफे की मांग की है।
वो बहुत गंभीर तथ्य है, अब कोई बात बचती नहीं है आर्ग्यूमेंट की कि क्या उनके पास क्या जवाब है। आज 4-5 दिन हो गए हैं, कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद भी मौन हैं और मुख्यमंत्री महोदय खुद मौन हैं।
बहरहाल आरोप प्रत्यारोपों की यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
हिमाचल प्रदेश वैसे तो ठंडी जगह है, लेकिन वहाँ भी इन दिनों सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी आमदनी से कहीं अधिक दौलत कमाई है। सीबीआई ने इस मामले में शुरुआती जांच शुरू कर दी है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने शिमला में मौजूद स्थानीय पत्रकार अश्विनी शर्मा से बात की।
वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के छठी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उसके पहले ये केंद्र में इस्पात मंत्री थे। उनके खिलाफ एक जांच शुरू हो गई थी, उस समय आयकर विभाग ने जांच शुरू करी थी। उनको कोई एक डायरी मिली थी, कोई इस्पात इंडस्ट्रीज का मामला था, उनके रेड हुआ था, उसमें एक डायरी मिली थी, उनमें कुछ नाम आए थे और उसमें ये माना गया था कि वीरभद्र सिंह जी क्योंकि उस समय इस्पात मंत्री थे, शायद उनका भी इससे कोई कनेक्शन है। और उसी मामले को आगे चलते हुए अब वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये मामला कई सालों तक चलता रहा। दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल हुई थी, उसमें सीबीआई ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी है जिसके ऊपर अभी आदेश आना बाकी है। लेकिन कल ये जो नई घटना चक्र शुरू हुआ, इसमें सीबीआई ने वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री है वो उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमदत्त सिंह और उनकी बेटी अपराजिता, तीनों को जांच के दायरे में ले लिया है।
अश्विनी जी, अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीतिक हलचल जो है इस तरह से बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन जो वीरभद्र के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है उससे अब वहाँ की राजनीति गर्म हो गई है और वो भी तब जब कांग्रेस वहाँ सत्ता में है।
ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली में सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री जो हैं वसुंधरा राजे, उनके खिलाफ जो ललित मोदी को लेकर मामला गर्म हुआ था उसके ऊपर बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है हिमाचल प्रदेश में, जो कि विपक्ष में है। हिमाचल प्रदेश आप कह रहे हैं एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे राजनीति के मुद्दे इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते, राष्ट्र स्तर के नहीं होते हैं, बट इस मामले को लेके कल से बीजेपी भी हमला कर रही है और मुख्यमंत्री का उन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया है। उधर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि क्योंकि केंद्रीय जो मंत्री है सुषमा स्वराज जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जो मामला गर्म हुआ है उसका ध्यान हटाने के लिए उनके ऊपर ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
ये थे शिमला से स्थानीय पत्रकार अश्विनी शर्मा, बता रहे थे राज्य में सियासत गर्मा रही है। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के सोपोर जिले में अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों 6 लोगों की हत्या के विरोध में अलगाववादियों ने श्रीनगर से सोपोर तक मार्च निकालना चाहा, लेकिन प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम और अलगाववादियों को गिरफ्तार करके इस प्रदर्शन को रोक दिया। और जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से रियाज मसरूर।
श्रीनगर से उत्तर की ओर 50 किलोमीटर के इस मार्च के लिए बड़े अलगाववादी नेताओं सईद अली गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक ने साझी अपील की थी, लेकिन कल दिन भर श्रीनगर और सोपोर में नाकाबंदी की गई और अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया। रमजान का पहला दिन और जुमे होने के बावजूद लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहा। गौरतलब है सोपोर में 25 मई को रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ और 3 हफ्तों में पूर्व चरमपंथियों और हुर्रियत कार्यकर्ताओं समेत 6 लोग मारे गए। अचानक सामने आए घुट लश्कर इस्लाम ने इनमें से 2 लोगों को चेतावनी के बाद भी अपनी जमीन से मोबाइल फोन के टॉवर्स न हटाने के लिए मारने का जिम्मा लिया। लश्कर इस्लाम ने फोन टॉवर्स पर प्रतिबंध लगाया था। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 चरमपंथियों के फोटो जारी करके इनके सर पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सईद सलाहुद्दीन पहले ही कह चुके हैं कि इन हत्याओं में भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। सोपोर में इन हत्याओं की वजह से 1 महीने से डर का माहौल है। अलगाववादियों ने सरकार के विरोध में कल वहां रैली करने का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने एक दिन पहले ही अलगाववादियों और इनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया। 85 वर्षीय सईद अली गिलानी ने कल घर के बाहर पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास किया, जिस पर इन्हें गिरफ्तार करके निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
ये BBC है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। आइए दोबारा चलते हैं मुंबई सुशांत मोहन के पास। सुशांत, मुंबई से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है बताएंगे आप?
जी देखिए, अगर आप मोटे तौर पर मुझसे पूछें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश से होने वाले नुकसान, बारिश से होने वाले जल भराव के बारे में लिखा है। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स खोलते हैं तो आपको मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके में बारिश के पानी में किसी गड्ढे में आधी धस चुकी कार की तस्वीर नजर आएगी और अखबार की हेडलाइन भी यही कहती है कि मुंबई असहाय लकवाग्रस्त। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पहले पन्ने पर लगभग आधी पानी में डूब चुकी गाड़ी की तस्वीर लगाई है। तस्वीर का कैप्शन भी यही कहता है कि सबसे अमीर कॉरपोरेशन ने किया मुंबईकरों को असहाय। हेडलाइन बताती है कि पिछले 24 घंटे में हुई वर्षा साल 2005 के बाद सबसे ज्यादा थी। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई में जहरीली शराब से मौत की खबर और मुंबई में बारिश से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन को बराबर दो हिस्सों में जगह दी है। कल जहरीली शराब से मौत की खबर जो थी वो एक बड़ी खबर थी, जहां बाकी अखबारों में जहरीली शराब से मरने वालों की मौत का आंकड़ा जो है वो बताया गया है कि वो सिर्फ 56 है, वहीं इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि ये 64 तक पहुंच चुका है और 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जा चुके हैं। मुंबई में आने वाले एक और लोकप्रिय अखबार डीएनए की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य पृष्ठ पर एक ही खबर है, वो है बारिश में बही मुंबई। और साथ ही अखबार ये भी चेतावनी जारी कर रहा है कि मुंबई वासी तैयार रहें, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दो दिनों में भी भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई में आने वाले मराठी अखबारों की अगर मैं बात करूं तो लोकमत जो सबसे ज्यादा यहां पर रोटेट होता है उसमें मुंबई ठप होने की खबर को पूरे पहले पन्ने पर जगह दी गई है। वहीं लोकसत्ता भी अपने पहले पन्ने पर पूरी तरह से यही दिखाता है कि मुंबई किस तरह से कल अपने घुटनों पर झुक गई थी।
बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत मोहन इस तमाम समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। जरूरत हुई तो हम आपसे दोबारा विश्व भारती कार्यक्रम में एक घंटे के बाद फिर संपर्क करेंगे। और अब जानते हैं प्रगति सक्सेना से देश दुनिया में आज क्या कुछ हो रहा है।
दिल्ली में योग दिवस की तैयारियों के चलते राजपथ के आसपास लगभग 47 इमारतों में स्थित सभी सरकारी दफ्तर आज दोपहर 1 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। सरकारी आदेश के अनुसार ये सभी दफ्तर कल योग दिवस संपन्न होने तक बंद रहेंगे। ब्रिटेन में खर्चों में कटौती के खिलाफ लोग आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शनकारी अगले 3 साल में सरकार की खर्चों में भारी कटौती की योजना का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरां फाबियोस आज मिस्र, फलस्तीनी और अन्य अरब अधिकारियों से मिल रहे हैं। मध्य पूर्व में शांति बहाली की प्रक्रिया इस बैठक का प्रमुख एजेंडा है। म्यांमार में विपक्षी दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष आंग सान सू ची अपने दल की 2 दिवसीय बैठक को आज संबोधित करेंगी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी म्यांमार में आम चुनावों की तैयारी कर रही है।
बीबीसी इंडिया बोल।
ललित मोदी कांड का दाग कैसे धोएगी नरेंद्र मोदी सरकार? 5 साल से फरार आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को बीजेपी नेताओं की कथित मदद पर राजनीतिक बवाल। क्या इस कांड के बाद भी बेदाग छवि का दावा कर पाएगी मोदी सरकार? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आज शनिवार है और शनिवार से ठीक 1 दिन पहले हर हफ्ते सुनने को मिलता है कि आज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने दस्तक दी है, उस फिल्म ने दस्तक दी है। ये बॉक्स ऑफिस कहाँ है और किस रंग का है जरा पता चले तो हमें बताइएगा। बहरहाल कल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है ABCD2 ने। चलिए सुमिरन प्रीत के साथ देखते हैं कैसी है ये फिल्म।
Indian films and dance go hand in hand. Well, Indian films में dance की बात हो तो इन जनाब का नाम तो जुबा पर जरूर होगा। He is back with the film Anybody Can Dance 2. Anybody Can Dance 2, जिसे डायरेक्ट किया है रेमो डी सूजा ने, प्रोड्यूस किया है डिज्नी और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने। इस फिल्म में नजर आ रहे हैं प्रभु देवा और वरुण धवन और श्रद्धा कपूर। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी। नम्रता, कैसी लगी आपको ये फिल्म और क्या इस फिल्म का ऐसा इम्पैक्ट था कि बीच बीच में आप भी मजबूर हो गए डांस करने को?
जिस तरह का डांस उसमें दिखाया गया है वैसा डांस मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ शायद यंगस्टर्स के लिए काफी डांस वर्दी फिल्म साबित हो। मुझे ऐसा लगा कि फिल्म एक एक्सटेंडेड डांस शो जैसी है, यू नो, जो टैलेंट शोज़ हम टेलीविज़न में देखते आते हैं ना, टैलेंट हंट शोज़, काफ़ी हद तक उसके जैसी लगी। और फिल्म का बैकड्रॉप भी ऐसा ही है कि नाला सोपारा की कोई एक टीम जो एक डांस शो में बहुत अच्छा करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने एक कोई फिलीपींस की टीम के स्टेप्स पूरी तरह से कॉपी किए थे, तो एक एम्बैरेसमेंट होता है। और किस तरह से वो फिर अपने आप को, जो अपना जो प्रतिष्ठा है उसे वापस लेने के लिए एक हिप हॉप कॉम्पिटिशन जो लास वेगास में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहानी कुछ नहीं है, किरदार कुछ खास एस्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, डायलॉग ऐसे लिख दिए हैं जैसे कि चलते फिरते लिखा लिखाई की गई है। उसका कारण यह है कि फिल्म पूरी तरह से डांस के जो सेट पीसेस हैं उस पे फोकस करती है, और उन डांस के सेट पीसेस के बीच में कहानी घुसाई गई है। ऐसा नहीं है कि कहानी सोचकर फिर डांस के थ्रू उसे आगे ले जाया जाए। आफ्टर अ पॉइंट बहुत बोरिंग हो जाते हैं, तो एक सेमनेस आ जाती है। मुझे जो लगा कि माई टेक अवे जो कहते हैं ना कि फिल्म से क्या था, तो मुझे लगा एक बेगुनाह करके जो सेट पीस था, एक डांस था, वो इन लोगों ने काफ़ी हद तक बढ़िया फिल्माया है। मतलब डांस जो है वो बहुत चकाचौंध के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डांस अच्छा किया गया है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स ने डांस को बढ़ाया है, डांस अपने में जैसा भी रहा हो। इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस, मैंने कहा ना कहानी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है, सिर्फ नाच है बस। तो मैं इसको फिर 5 में से 2 नंबर देती हूँ।
ये तो थी फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी की राय। अब जानते हैं जनता जो ये फिल्म देखकर आई है उनका क्या कहना है।
Actually, it was sub mix tha, so acha tha wo. Varun was very good.
Prabhu Deva is too good. I mean, no comparison for him. He's very nice.
Story bahut achi thi aur pehli baar India ko matlab kisi ko haarte hue bataya hai, jo bahut acha laga.
BBC.
Aur ab hafte bhar ki khel halchal.
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। आखिरकार बांग्लादेश ने अपनी ही जमीन पर खेलते हुए ही सही वो सपना तो पूरा किया जिसका वो लगभग 3 साल से इंतजार कर रहा था। बांग्लादेश ने मीरपुर में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को शुक्रवार को देर रात 79 रन से कड़ी मात दी। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत को साल 2012 में मीरपुर में ही 5 विकेट से हराया था। अब दोनों टीमें कल दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में आमने सामने होंगी। बांग्लादेश ने वैसे तो भारत के लिए खतरे की घंटी तब ही बजा दी थी जब उसकी सलामी जोड़ी तमीम इकबाल और सौम्य सरकार ने 13.4 ओवर में ही पहले विकेट के लिए 102 रनों की साझेदारी की। बांग्लादेश ने दूसरी बार खतरे की घंटी तब बजाई जब उसके गेंदबाजों ने भारत के 5 चोटी के बल्लेबाज 128 रन तक पेवेलियन भेज दिए। बांग्लादेश के लिए उनके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने तो और भी कमाल करते हुए अपने पहले ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 9.2 ओवर में ही 50 रन देकर 5 विकेट झटके। बांग्लादेश ने पहली बार भारत के खिलाफ 307 रनों जैसा बड़ा स्कोर भी बनाया और भारत के खिलाफ पहली बार पहले विकेट के लिए इतनी बड़ी साझेदारी भी की, यानी खेल के हर विभाग में भारत को पछाड़ा। इस करारी हार के बाद भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी बांग्लादेशी टीम की तारीफ की। ऐसा नहीं है कि हमने खराब गेंदबाजी की, लेकिन उन्होंने गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए बड़े शॉट खेले। उन्होंने हमारे गेंदबाजों पर दबाव डाला। ब्रेक के बाद हमने वापसी की, लेकिन जब तक स्पिनर कुछ करते 307 रनों जैसा बड़ा स्कोर बन गया जो छोटा नहीं होता। हम उसे हासिल कर सकते थे, लेकिन बल्लेबाजों ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। कप्तान धोनी के शब्द। अब धोनी कुछ भी कहते रहें, तीर तो चल ही चुका है, वो भी जीत का। और बांग्लादेश कल दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में कुछ भी करे, लेकिन भारत को जीत के लिए बहुत कुछ करना होगा। अब प्रतिष्ठा भारत की दांव पर है। वैसे धोनी को पहले मैच में अपनी 75% मैच फीस भी गंवानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को धक्का दिया था, या ये कहिए टकराए थे। फीस मुस्तफिजुर रहमान की भी कटी, लेकिन 50%। उधर गॉल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल स्टंप के समय पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट खोकर 118 रन था। पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज यूनिस खान ने 47 रन बनाए, जबकि श्रीलंका के धमिका प्रसाद ने 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी पूरे 300 रनों पर समाप्त हुई। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज कौशल सिल्वा ने 125 रनों की शतकीय पारी खेली। पाकिस्तान के वहाब रियाज और जुल्फिकार बाबर ने 3-3 विकेट हासिल किए। और अब बात हॉकी की। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम आज से विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स मुकाबलों में अपना दमखम दिखाएगी। दरअसल ये टूर्नामेंट ओलंपिक में जगह बनाने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपने पूल में आज फ्रांस का सामना करेगा, जबकि उसके अलावा उसे पोलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी करना है। उल्लेखनीय है कि पहले 3 स्थानों पर रहने वाली टीमों को रियो ओलंपिक का टिकट मिल जाएगा। उधर महिला वर्ग में आज भारतीय टीम बेल्जियम का सामना करेगी। विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला टीम 13वें और बेल्जियम 12वें पायदान पर है। बेल्जियम के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम करने के साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहले ही रियो ओलंपिक्स में अपनी जगह बना चुकी है। देखना है भारतीय महिला हॉकी टीम कैसा खेल दिखाती है। और अब बात टेनिस की। तीसरी वरीयता हासिल जोड़ी के रूप में खेल रहे भारत के लिएंडर पेस और कनाडा के डेनियल नेस्टर एगॉन एटीपी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में लिएंडर पेस और डेनियल नेस्टर की जोड़ी ने स्पेन के मार्क लोपेज और राफेल नडाल की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराया। इसके अलावा गैरी वेबर ओपन टेनिस में दूसरी वरीयता हासिल जोड़ी भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया पुरुष युगल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
बात चाहे खेल खिलाड़ी की हो या फिल्म समीक्षा की हो या हमारे तमाम दूसरे कार्यक्रमों की, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जो भी आपको लगता है हमें अपनी राय से अवगत ज़रूर कराएं। हमारा पता BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल के ज़रिए आप अपने मन की बात हम तक पहुँचाएँ, hindi.letters@bbc.co.uk पर। एक खबर जो अभी तैयार हो रही है, कुछ देर बाद आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आकर उस खबर को पढ़ पाएंगे। मैं आपको ज़रा सा बताता चलूं, वो खबर इस बारे में है कि जिन बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है वो बच्चे झूठ बोलने में भी माहिर होते हैं। आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जो 24 घंटे आपके साथ है। और इसके साथ ही एक बार फिर वक्त हो रहा है प्रमुख विश्व समाचारों का। प्रगति सक्सेना स्टूडियो में आ चुकी हैं।
बीबीसी समाचार। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मैक्सिको के उत्तरी शहर गार्सिया में कुछ बंदूकधारियों ने एक बियर हॉल में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। इस हमले का क्या मकसद था, ये अभी साफ नहीं हुआ है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक अफ्रीकी अमेरिकी चर्च में गोलीबारी कर 9 लोगों को मारने के आरोप में पकड़े गए डिलन रूफ को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया है। क्रेमलिन का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास से ग्रीस को वित्तीय मदद देने पर कोई चर्चा नहीं की। बहरहाल दोनों देशों ने एक गैस पाइपलाइन बनाने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए इथोपिया का दौरा करेंगे। जिनेवा में यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि इस्माइल शेख अहमद लगातार 4 दिन तक दोनों पक्षों और उनके सहयोगियों से बात करते रहे, लेकिन वे उनके बीच युद्ध विराम का कोई समझौता नहीं करवा सके। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के इस अंक में इतना ही। खबरें आप तक ठीक तरह से पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा, स्टूडियो संभाल रहे थे। अभी बजे हैं 7, ठीक एक घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक पूरी टीम को अनुमति दीजिए।